नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराइस की पुस्तक इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, आत्मविकास, स्वास्थ्य और जीवन के अर्थ पर केंद्रित एक संक्षिप्त गैर कथा पुस्तक है। इसका आधार जापानी विचार इकिगाई है, जिसका सामान्य अर्थ जीने का कारण या हर सुबह उठने की प्रेरणा माना जाता है। लेखक विशेष रूप से ओकिनावा के ओगिमी क्षेत्र के दीर्घायु निवासियों के अनुभवों की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि उद्देश्य, सामाजिक जुड़ाव, दिनचर्या, भोजन तथा सक्रियता किस तरह लंबे और संतोषजनक जीवन से जुड़े हो सकते हैं। पुस्तक इकिगाई को केवल पेशेवर उपलब्धि या धन कमाने के सूत्र के रूप में नहीं रखती। इसके बजाय यह छोटे दैनिक कामों, रुचियों, रिश्तों और उपयोगी बने रहने की भावना को भी अर्थपूर्ण जीवन का हिस्सा मानती है। चर्चा में लॉगोथेरेपी, फ्लो, तनाव प्रबंधन और कुछ दीर्घायु समुदायों की आदतें शामिल हैं। इसका उद्देश्य कठोर वैज्ञानिक नुस्खा देना नहीं, बल्कि पाठक को अपनी प्राथमिकताओं, गति और उद्देश्य पर विचार करने के लिए एक व्यावहारिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इकिगाई को पेशेवर लक्ष्य नहीं, जीने के व्यक्तिगत कारण के रूप में समझना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि इकिगाई वह कारण है जो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन में संलग्न रखता है। लोकप्रिय प्रस्तुतियों में इसे अक्सर चार क्षेत्रों के मिलन के रूप में बताया जाता है। आप क्या प्रेम से करते हैं, किसमें कुशल हैं, दुनिया को किसकी जरूरत है और किस काम के लिए पारिश्रमिक मिल सकता है। यह ढांचा उपयोगी आत्मचिंतन दे सकता है, विशेषकर करियर बदलने या दिशा खोजने वाले लोगों को। फिर भी पुस्तक का व्यापक संदेश इससे बड़ा है। इकिगाई का स्रोत कोई एक भव्य मिशन होना आवश्यक नहीं है। बागवानी, कला, परिवार की देखभाल, समुदाय में योगदान, सीखना या किसी कौशल का निरंतर अभ्यास भी व्यक्ति को उद्देश्य दे सकता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल नौकरी को पहचान का केंद्र बनाने से व्यक्ति अस्थिरता या निराशा महसूस कर सकता है। लेखक उद्देश्य को दैनिक भागीदारी से जोड़ते हैं, न कि किसी अंतिम उपलब्धि से। इसलिए पाठक के लिए उपयोगी प्रश्न यह नहीं कि एक ही सही बुलावा क्या है, बल्कि यह है कि कौन सी गतिविधियां ऊर्जा, उपयोगिता और निरंतर जुड़ाव पैदा करती हैं। पुस्तक उद्देश्य को खोजी जाने वाली स्थिर वस्तु के बजाय जीवन के साथ पोषित होने वाली दिशा की तरह प्रस्तुत करती है। दूसरा, ओकिनावा की दीर्घायु से सक्रियता, समुदाय और संयम का संबंध। गार्सिया और मिराइस ओकिनावा, विशेषकर ओगिमी के बुजुर्ग निवासियों की जीवन शैली को पुस्तक की प्रमुख पृष्ठभूमि बनाते हैं। उनका ध्यान केवल अधिक वर्षों तक जीवित रहने पर नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के बाद भी उपयोगी, सामाजिक और सक्रिय बने रहने पर है। पुस्तक के अनुसार नियमित हलचल, घर या समुदाय के काम, परिचित लोगों से संपर्क और भोजन में संयम ऐसी आदतें हैं जो जीवन की गुणवत्ता को सहारा दे सकती हैं। लेखक यह विचार भी रखते हैं कि पूर्ण निष्क्रियता के बजाय किसी न किसी रूप में सक्रिय बने रहना व्यक्ति को दिनचर्या और उद्देश्य देता है। भोजन के संदर्भ में मात्रा पर नियंत्रण का सिद्धांत उभरता है, यानी आवश्यकता से अधिक न खाना। सामाजिक स्तर पर मित्रता और पारस्परिक सहायता को महत्व दिया गया है, क्योंकि अलगाव मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए चुनौती हो सकता है। इन अवलोकनों को चमत्कारी दीर्घायु सूत्र नहीं मानना चाहिए। लंबी आयु पर आनुवंशिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, आय, पर्यावरण और अनेक अन्य कारक भी असर डालते हैं। पुस्तक की उपयोगी बात यह है कि वह दीर्घायु को केवल चिकित्सा का विषय नहीं, बल्कि संबंधों, गति, भोजन और दैनिक भूमिका के सम्मिलित परिणाम के रूप में देखने को कहती है। तीसरा, लॉग थेरेपी के माध्यम से अर्थ को मानसिक दृढ़ता का आधार मानना। पुस्तक में विक्टर फ्रैंकल की लॉगोथेरेपी का उल्लेख इकिगाई के मनोवैज्ञानिक आयाम को समझाने के लिए किया गया है। लॉगोथेरेपी का मूल आग्रह है कि मनुष्य अर्थ की खोज से गहराई से प्रेरित होता है। कठिन परिस्थितियों में भी किसी जिम्मेदारी, संबंध, कार्य या मूल्य से जुड़ाव व्यक्ति को सहन शक्ति दे सकता है। लेखक इस विचार को इकिगाई से जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों में जीवन को केवल सुख की तलाश नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण संलग्नता के रूप में देखा जाता है। यह दृष्टि उन आधुनिक धारणाओं के विरुद्ध है जो खुशी को निरंतर आराम, उत्तेजना या बाहरी उपलब्धि से मापती हैं। पुस्तक संकेत देती है कि व्यक्ति की संतुष्टि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह अपनी भूमिका को उपयोगी और सार्थक मानता है या नहीं। हालांकि अर्थ की खोज को मानसिक स्वास्थ्य उपचार का सरल विकल्प मानना उचित नहीं होगा। गंभीर अवसाद, आघात या अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं में पेशेवर सहायता आवश्यक हो सकती है। फिर भी पुस्तक का बिंदु व्यावहारिक है। नियमित रूप से यह देखना कि किन लोगों, कामों और मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, निर्णयों को अधिक स्पष्ट बना सकता है। इकिगाई यहां आत्मकेंद्रित महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि स्वयं से बाहर किसी संबंध और योगदान का अनुभव बन जाता है। चौथा, फ्लो की अवस्था और एकाग्र अभ्यास से रोजमर्रा की संतुष्टि। इक्कीगाई में फ्लो की अवधारणा उस अनुभव को समझाती है जिसमें व्यक्ति किसी काम में इतना केंद्रित हो जाता है कि समय और बाहरी चिंताओं का बोध कम हो जाता है। यह निष्क्रिय मनोरंजन से अलग है। फ्लो आमतौर पर तब उभरता है जब काम की चुनौती व्यक्ति की क्षमता के अनुकूल हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और ध्यान बार बार भंग न हो। लेखक इस अवस्था को आनंद और उद्देश्य के बीच पुल की तरह देखते हैं। कोई व्यक्ति संगीत का अभ्यास, लेखन, हस्तकला, खेल, खाना बनाना या बागवानी करते हुए ऐसा अनुभव कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिविधि केवल परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के अपने मूल्य के लिए भी की जाए। पुस्तक की इस चर्चा का आधुनिक कार्य जीवन में विशेष महत्व है, जहां लगातार सूचनाएं, जल्दबाजी और एक साथ अनेक काम गहरे ध्यान को कठिन बनाते हैं। व्यावहारिक रूप से पाठक ऐसे काम पहचान सकता है जिनमें वह स्वाभाविक रूप से डूब जाता है, फिर उनके लिए नियमित और बिना बाधा का समय बना सकता है। चुनौती बहुत आसान होगी तो ऊब आएगी और बहुत कठिन होगी तो चिंता बढ़ सकती है, इसलिए धीरे धीरे कौशल बढ़ाना जरूरी है। फ्लो इकिगाई का पूरा अर्थ नहीं है, पर यह दिखाता है कि अर्थपूर्ण जीवन अक्सर निरंतर ध्यानपूर्ण अभ्यास से बनता है। अंत में धीमी गति, कृतज्ञता और वर्तमान पर ध्यान की जीवन शैली। पुस्तक के व्यावहारिक सिद्धांतों में जीवन की गति को कम करना, मुस्कराहट और कृतज्ञता की आदत, प्रकृति से संपर्क, शारीरिक सक्रियता और वर्तमान क्षण पर ध्यान शामिल है। इन विचारों का उद्देश्य उत्पादकता को अधिकतम करना नहीं, बल्कि अनावश्यक जल्दबाजी और तनाव को कम करना है। लेखक के लिए धीमा जीवन आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है कामों को पर्याप्त ध्यान से करना, शरीर की सीमाओं को समझना, भोजन और बातचीत जैसे सामान्य अनुभवों के लिए स्थान रखना और हर समय अगले लक्ष्य की चिंता में न रहना। कृतज्ञता भी यहाँ कोई सतही सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि उपलब्ध संबंधों, सहायता और छोटे सुखों को पहचानने का अभ्यास है। यह दृष्टि कमी पर केंद्रित मन को संतुलित कर सकती है। प्रकृति से जुड़ाव और हल्का नियमित व्यायाम दिनचर्या में शारीरिक लय जोड़ते हैं। फिर भी इन सुझावों को कठोर नियमों की सूची की तरह अपनाना पुस्तक की भावना के विपरीत होगा। अलग आर्थिक स्थितियों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य सीमाओं में सबके विकल्प अलग होते हैं। अधिक सार्थक प्रयोग यह है कि पाठक अपने दिन में एक या दो ऐसे बदलाव चुने जो तनाव घटाएं और संबंध या ध्यान बढ़ाएं। इस तरह इकिगाई दूर की आदर्श अवस्था नहीं, दैनिक चुनावों में अव्यक्त होने वाली जीवन शैली बनती है। निष्कर्ष में, इकिगाई उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो उद्देश्य, काम, उम्र बढ़ने, तनाव या जीवन की गति के बारे में सरल लेकिन विचारोत्तेजक दृष्टि चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों को उपयोगी लग सकती है जो करियर को ही अपने मूल्य का एकमात्र स्रोत मानने लगे हैं या जो छोटे कामों, रिश्तों और रुचियों में अर्थ को फिर से देखना चाहते हैं। पुस्तक का लाभ किसी निश्चित उत्तर में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्नों में है। कौन सी गतिविधियां मुझे जीवंत और केंद्रित रखती हैं? किन संबंधों तथा जिम्मेदारियों से मेरी उपयोगिता जुड़ी है? मेरी दिनचर्या में सक्रियता, भोजन, विश्राम और समुदाय के लिए कितनी जगह है? पाठक इन प्रश्नों से व्यक्तिगत प्रयोग शुरू कर सकता है, जैसे किसी रुचि के लिए नियमित समय, मित्रों से अधिक स्थिर संपर्क या भोजन और काम की गति पर सजगता। समान आत्मविकास पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान उद्देश्य को केवल महत्वाकांक्षी पेशेवर सफलता से न जोड़ना है। ओकिनावा की जीवन शैली, लॉगोथेरेपी और फ्लो को साथ रखकर यह अर्थ, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव के संबंध पर एक सुलभ चित्र बनाती है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है। यह इकिगाई खोजने की विस्तृत कार्यपुस्तिका या कठोर वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। कुछ पाठकों को इसकी संरचना और व्यावहारिक अभ्यास अपर्याप्त लग सकते हैं। फिर भी जो व्यक्ति प्रेरक, संक्षिप्त और चिंतनशील प्रवेश बिंदु चाहता है, उसके लिए यह उपयोगी है। इसे अंतिम समाधान के बजाय अपनी दिनचर्या और प्राथमिकताओं की ईमानदार समीक्षा के निमंत्रण के रूप में पढ़ना सबसे उचित रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, हेक्टर गार्सिया, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।